તારીખ 30/9/1990 શ્રી પદ્મનંદી પંચવિષ્ટિકા ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ઈડરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 43.
अनुभव कहते हैं वो क्या है? अनुभव करना तो ज्ञान का काम है, तो ज्ञान ज्ञान के अनुभव में रहते हो तो खुद ही अनुभूति स्वरूप ही है, उसको खुद का अनुभव होने से अंतर्मुख हो जाता है। ज्ञान विशेष है, होगी ज्ञान सामान्य के आकार रूप हो जाता है, साकार हो जाता है। अवलंबन त्रिकालिका, अनुभव त्रिकालिका नहीं, अनुभव वर्तमान का और अवलंबन। इसके आगे ये समस्त जगत इंद्रजाल है,
ज्ञान विशेष ज्ञान सामान्य रूप है,
ज्ञान विशेष भी सामान्य आकार हो जाता है, तो यह आकार मिट जाता है। इसका संवेदन इन्हीं का संपर्क हो जाता है, सफल प्रकाशक होने पर भी ये का संपर्क हो जाता है, कोई अन्य ये का संपर्क नहीं। उसका अनुभव आ जाएगा, अन्य गय का कोई संपर्क
नहीं जाएगा। ज्ञान को अंदर को जाएगा, सामान्य से जाएगा ज्ञान सामान्य ने पकड़वो पड़े, જે
દાળ ઓર સબ્જી જો ભી હૈ નમક કો કૈસે દેખતા હો, નમક કો પકડતે હો કે નહીં પકડતે હો? वहाँ तीखापन भी है, मीठापन भी है, खटाई भी डाली है, बहुत से मसाले डाले हैं, इतने मसाले डाले हैं, इसमें से एक नमक है, कैसे पकड़ते हैं?
टेस्ट से पकड़ते हैं, टेस्ट से पकड़ते हैं,
स्वाद से पकड़ते हैं। स्वाद तो दूसरी चीजों का भी है, लेकिन ये का स्वाद क्यों पकड़ते हैं? अब मेरा प्रश्न देखिए, प्रैक्टिकली इसका अनुभव को तलाश करना है, पृथक्करण करना है, एनालाइज करना है, हम कैसे
पकड़ेंगे?
है लेकिन तीखा बड़ा भी साथ में है, खट्टा भी साथ में है, कोई दूसरी जगह तो नहीं है।
नान ने एक दिए कम से चेक कर लिया,
क्या हमें सिर्फ खरापना देखना है? इस दृष्टिकोण को हमने हस्तगत कर दिया, संस्कृत भाषा में कहते हैं आविर्भूत किया, सिर्फ खारेपन को आविर्भूत कर लिया हमारे ज्ञान में, और उसी जगह जो तिखा थी, खटाई थी, मिठाई थी, उसको हमने तिरोहित कर दिया, मैंने गौण कर दिया। आविर्भूत कहो या मुख्य कहो या लक्ष्य केंद्रित किया वो कहो, तिरोभूत किया मैंने, गौण कर दिया या ज्ञान में से छोड़ दिया, के जनाते हुए भी नहीं ध्यान में नहीं आवे, लक्ष्य में नहीं आवे, जानना छोड़ नहीं सकते, तिखास को छोड़ नहीं सकते जानने का, लेकिन उसको गौण कर सकते हैं। कैसे दूसरे पदार्थ दिया भी ज्ञान में आएंगे, छोड़ नहीं सकेंगे ज्ञान में, लेकिन लक्ष्य छोड़ सकते हैं, गौण कर सकते हैं।
तो प्रोसेस हम लोग आता है, प्रोसेस इसका जो है ये हम लोग आता है करने के लिए,
आता है,
आता है,
प्रोसेस आता है, प्रैक्टिस करना बाकी है। इस साइड में दूसरे साइड में प्रैक्टिस हो ही रही है, इस साइड में अपने आप में ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना है, ये प्रयोग करना है। ज्ञान सामान्य को अहम रूप में देखने से क्या, ज्ञान देह में तो हम परा नहीं करना है, राग में तो हम पड़ा नहीं करना है, लेकिन ज्ञान विशेष में भी हम पड़ा नहीं करना है। अब बहुत बड़ा तात्विक ग्रंथ है ना, जो गुरुदेव के हाथ में आए, जो गोपालुदेव के हाथ में आए। गोपालुदेव के हाथ में जब समस्या आया ऐसा सुना है,
जो रुपया पास
तो हमने ये सुना की कोई मम्मी अपनी गद्दी पे मिल गया, वो जो कोई आदमी स्टाफ का होगा उसको बोला, उस वक्त रुपये रुपये थे, कोई नोटबुक नहीं थी चांदी के, वो कोठों बड़े वो ठेले में भरते थे, उसको त्रास में निकाला, ऐसा दो हाथ से दिया, खूब आपने क्या कितना बहुमान आया, ऐसी बातें रही है इसमें। आत्मा को हस्तगत करने की बातें इसमें रही है कि कैसे पकड़े आत्मा, ऐसे पकड़ने में नहीं आता है, ऐसे ऐसी बातें कर पकड़ने में आ रहा है, संसारिक पुरुष है पकड़नी ठीक, वरना तो सब कुछ चाहिए उनको संस्कारी से तो पकड़ लिया, समागम में से पकड़ लिया, ये दृष्टिकोण साध्य करना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टिकोण साध्य करना ये प्रैक्टिस करनी चाहिए।
भक्ति है पूर्व भूमिका में यह भक्ति है
जिसमें परमात्मा होने की बातें लिखी है, और लिखने वाले भी परमात्मा स्वभाव में बैठ गए तब ये बातें निकली है। जगत की परिस्थिति भी है, इसकी उत्पत्ति जो है वो भी इसी प्रकार से है, ये सब चीजें ध्यान में आती है, ध्यान में आती है, इसलिए बहुमान भी उतना ही आता है। ये निमित्त का विवेक यही आत्मा का विवेक है, वहां तो ये निमित्त का विवेक वही आत्मा का विवेक है, सत्पुरुष भी निमित्त है लेकिन इसकी भक्ति वो आत्मा की भक्ति है, गुरु में भी आत्मा की भक्ति है, आत्मभाव के प्रति बहुमान है, वास्तव में ये बहुमान आत्मभाव के प्रति हुआ है। केंद्र लक्ष्य बिंदु है, केंद्र स्थान है उसको ही है, लक्ष्य का केंद्र वही है, आत्मभाव है, आत्म स्वभाव है। से निकलता है यह समस्त जगत इंद्रजाल है, इसमें से यह निकलता है, जब ये जगत इंद्रजाल है तो वास्तविकता कौन सी है, ज्ञान विशेष तक से इंद्रजाल है, ज्ञान सामान्य से वास्तविक एक नई दुनिया अपने में देखने में आती है। इस दुनिया में तो मर्यादित आबादी है, आबादी में लेकिन भीतर की दुनिया में जिसकी हद नहीं है उतनी बस्ती है, अनंत गुण के निवास करते हैं, अनंत गुण निवास करते हैं, इतनी आबादी है। हिंदी जबान में बड़ा बड़ा अच्छा टोन आता है, बस्ती को आबादी कहते हैं, क्या कहते हैं, आत्मा में अनंत गुण है, आत्मा की आबादी है, और गुजराती में आबादी का अर्थ दूसरा होता है, जिसको भाव सुंदरता हो जाती है ना, भाव जला ले होती है, देखिए उसको हम लोग आबादी कहते हैं, गुजराती में इनकी तो आबादी देखते हैं, ये आत्मा की आबादी है, जिसको प्रॉपर्टी बढ़ जाती है ना उसको आबादी कहते हैं, ये आत्मा की प्रॉपर्टी है, ये आबादी है, इसका भाव आता है, हिंदी में ये थोड़ा निकलता है आबादी से, अपना गुजराती दृष्टिकोण से देखें तो आबादी शब्द में ये दिखता है कि क्या बात है, वास्तव में यही आबादी है, उसकी प्रॉपर्टी है वही आबादी,
प्रॉपर्टी आत्मा आदि की,
हाँ सभी प्रकार के दिन काफी चले जा रहे हैं, मैंने रात को तिल कुछ परिग्रहणी, तिल कुछ मात्र परिग्रहणी होने पर भी दिनता है कहीं,
अहंकार को दिखाई देता है,
इतना गुण वैभव दिखता है पितर में कि इसके आगे इंद्र का इंद्रासन है वो एक तृणगत दिखता है। कृपा को लिखते हैं सारा जगत सोने का हो जाए हमारे लिए, लोग तो क्या करते हैं अपने पास नहीं होते लेकिन बात करते हैं देखो बिरला के पास उतना है, टाटा के पास उतना है, बांगुर के पास उतना है, उसके पास उतना है, उसके पास उतना है, भरता करते हैं दूसरों की संपत्ति, अपने पास तो नहीं है दूसरों की संपत्ति की भरता करना है। तो ज्ञानी कहते हैं कि सारा जगत सोने का हो जाए, एक दो पार्टी नहीं, ये तो अपने गरीब देश है दो पांच बड़ी बड़ी पार्टियों की बात करते हैं, इसके पास तो इतना है उतना है, सारा जगत सोने का हो जाए हमारे लिए तो क्यों होता है, कितना नुकसान करता है दूसरे के माध्यम से अपनी मानसिक रुचि को तीव्र करता है, उसमें कितना नुकसान करता है इसलिए कहते हैं कि इंद्रजाल
बराबर
उसमें कुछ नहीं है। और ये इसका बहुत बड़ा बड़ा पुरावा तीर्थंकर देव का समोत्सव होता है, तीर्थंकर देव के समोत्सव में जो भौतिक चकाचौंध होती है चकाचौंध में आश्चर्य से चकित हो जाते हैं, इसका इसका नाम चकाचौंध है, घूम जाने कि मैं कहाँ आया, इंद्रपुरी में भी इतना वैभव नहीं है, इंद्र के इंद्रपुरी में भी उतना वैभव नहीं है, उतना वैभव दिखता है। वेंचर ने वर्णन किया है अपने डायरी में, भगवान का वर्णन किया है और एक समर्थन का वर्णन किया है, वो तो ऐसा किया कि जैसे अपने सामने जो चीज है उसको बता दे किस दिन से आया है।
समोसा
करा दे तो ये क्या होता है, भगवान जब बता जाते हैं भगवान बता रहे हैं, अब क्या होता है समोसा का क्या होता है, इंद्रजाल के सवाल
एक समय दूसरा समय नहीं लगता
है। इसको कोई ईट इसकी मिलती है क्या, आज राजगृह में चले जाओ कहते हैं कि वहाँ चौबीसों तीर्थन करके समर्पण आए थे राजगृह में, बोलते हैं एक ईट मिलती है सर, वो तो रत्नों की तो इनकी ये फ्लोरिंग होती है 500 धन को क्या जमीन पर कुछ देवे नहीं डालते, पाया वाया नहीं खोलते हैं अवकाश उनकी सीढ़ियां रहती रत्नों की तो उसकी चोरी होती है बिल्कुल, वो तो बात ही देवी संपत्ति है भगवान गए जैसे कुछ था ही नहीं, कांकरी भी उसके नहीं मिलेगा कंकर भी कोई अवशेष नहीं रहता, इंद्रजाल जैसी बात है, इतनी तीर्थंकर देव की संपत्ति भी इंद्रजाल है इसका ये पुरावा है। इसलिए वो समझ भद्राचार्य ने कहा कि देवी समोसन देख के हम आपको तीर्थंकर नहीं कहते, आपको प्रभुन नहीं कहते, क्या आपको देव नहीं कहते, भगवान नहीं कहते, इंद्रजाल में ऐसा हो सकता है आपको भीतर आता है देख करके हम कहते हैं कि आप हमारे देव हैं, और एक समय में उत्पाद में ध्रुव देखा अस्तित्व का, एक समय के अस्तित्व में उत्पाद में ध्रुव तीन देखा, ये आपका जो केवल ज्ञान है तो ये आपको देव कहने के लिए बराबर यथार्थ है सार्थक है, बाकी हम दूसरे को देव नहीं कहेंगे, इसके अलावा किसी को हम देव नहीं कहेंगे। अब तो नहीं ध्यान से निकाले कि इसका भी रक्षण करने वाले देव होते हैं, तो रक्षण की कोई जरूरत है क्या? इतने वो सामर्थ्यहीन है क्या कि दूसरा इसका रक्षण करेगा? क्या होता है, हर पदार्थ में एक समय में एक पदार्थ में ये जो इसकी मौजूदगी है, अस्तित्व है, उसमें ये तीन भंग होते हैं, तीन भेद होते हैं। कि पूर्व पर्याय का नाश होना उसको भेद कहते हैं, उसी काल में नए पर्याय का उत्पाद होना उसको उत्पाद कहते हैं, और पदार्थ का न उत्पाद है न व्यय है, ये तो ध्रुव डायग्राम लगा रहता है। इसका दृष्टान है कि हमारे पास ये शरीर होती है जिस पर काम लग जाता है, मानसून में लग जाता है, तो हम सरासर उसको ले जाते हैं काट निकालने के लिए, ऐसे नहीं जाता धोने से वो काट नहीं जाता, सरासर पर घिसने से वो चला जाता है, तो फिर चमक मार आती है। अब पहले काट गया और बाद में चमक आई, या पहले चमक आई और बाद में काट गया, क्या हुआ? कि जिस काल में वो काट गया था मैंने जंग कहते हैं, जंग लग जाता, तो जिस काल में वो जंग गया उसी काल में ही चमक आई है। चमक का आना और जंग का जाना में काल भेद नहीं है, एक ही समय है। भगवान ने एक समय की जो व्याख्या है वो उतनी सूक्ष्म कर दी है कि एक सेकंड का असंख्यात वाला भाग है उसको एक समय कहते हैं, कि जिसका दो भाग नहीं हो सकता। इसमें दो भंग है, आना और जाना, लेकिन समय का दो भंग नहीं है। तो असंख्यात का भाग का गणित के हिसाब से देखें तो लाखवा एक सेकंड का लाखवा भाग नहीं, करोड़वा नहीं, अरब बार का नहीं, और अरबों का अरबों वो भी असंख्यात में आता है। इससे भी सूक्ष्म असंख्यात वहां भाग जिसका दो भाग नहीं हो सके उसको एक समय, इसका उन्होंने दूसरा दृष्टांत देने काल को नापने का, ये गुलाब की पाखड़ी होती है बहुत कोमल होती है, आप 10,000 पाखड़ी को लो, एक पर एक पर एक पर थप्पे लगाओ, एक पर एक पर एक 10,000 पाखड़ी की छप्पी लगाओ, फिर उस पर एक सुया है, सुया मैंने बड़ी सोच बड़ी सोच होती है, उसको रख करके एक फटका मारो, तो 5 सेकंड से कम भाग में उस 10,000 पाखड़ी को छेद करके नीचे चला जाएंगे। क्रम से गया कि बिना क्रम से गया? पहले फिर 6,000, फिर दूसरे में 6,000, फिर तीसरे में, फिर 10,000 में 6,000। अब 5 सेकंड में 10,000 का छेद हो गया तो एक का कौन सा काल है? तो 5 सेकंड का 10,000 का भाग हो गया, मैंने 1 सेकंड का 40,000 का भाग किया। एक पाखड़ी को छेदने में कितनी देर लगी? 1 सेकंड का 40,000 का भाग हो गया, 50,000 भाग हो गया। ऐसा जाते जाते एक समय में असंख्यात का भाग होता है, एक समय कहते हैं, एक सेकंड का असंख्यात का भाग में एक समय। हमारे गुरुदेव प्रवचन करते थे, इसमें एक बात को बहुत सुंदर लगते थे, ये आत्मा है ऐसा करते हैं, प्रवचन यहां से साफ होता है, ये आत्मा है तो है उसका अस्तित्व हो गया। एक सेकंड के असंख्य वे भाग में मैंने एक समय में तो निर्मला निर्मलानंद है, ज्ञानानंद है, आनंद है, क्या प्रवचन काल होता है? हरेक प्रवचन, चाहे बंद अधिकार का समय सार का प्रवचन हो, या कोई नियम सार का प्रवचन हो, प्रवचन सार का हो, कोई भी शास्त्र का हो, परमात्मा का हो, लेकिन ये आत्मा है वो एक सेकंड के असंख्य में भाग में, मैंने वर्तमान समय में क्या वर्तमान एक समय में ज्ञानानंद है, नित्यानंद है, निर्मलानंद है, ऐसा करके वो आत्मभाव को अनुभव कर लेते हैं। क्योंकि मेरा अवलंबन का समय कौन था? परमात्म तत्व का जो अवलंबन अंतर में भीतर में लिया जाता है उसका समय कौन सा? एक समय। कौन सा एक समय? वर्तमान एक समय। ये कहने का अभिप्राय है, उसमें आविर्भाव होता है, आत्मभाव का उसमें आविर्भाव हो जाता है। सुनने का एक चार था, इसमें इनका भी रस था, सुनाने वाले का और सुनने वाले का, इसमें आत्मरस था। आत्मरस के उद्भव होकर के समझ भद्र आचार्य बहुत समर्थ आचार्य होते, उन्होंने ये बात की, कृपा उन्होंने लिया है तो कैसे बात करेंगे। ये समझ भद्र आचार्य ने ये बात किस ढंग से कही थी इसकी एक बहुत सुंदर कल्पना कि जैसे जंगल में सिंह त्राड़ नाचता है तो सारे जंगल में सब कांपते हैं, सब दूसरे प्राणी कांपते हैं कि ये जंगल का राजा त्राड़ डालता है, कोई उसका कोई गुस्सा आ गया पहुंच गया है, जबरदस्त मार डालेगा, कोई सामने सामने मत जा रहा। ऐसे समुद्र आचार्य ने जंगल में ये त्राड़ डाली है, ऐसा करके दिया है तो शैली था। देखिए परमात्मा मित्राग है, सर्वज्ञ है, केवली है, लेकिन ये समोसरण आदि विभूति देख कर मैं ऐसा नहीं मानता, ऐसे प्रावधानी है। आपने तो एक समय में चुपचाप हुए दो, ऐसा समय एक और अस्तित्व में तीन हमने देख लिए, ऐसे जो आपका ज्ञान है केवल ज्ञान एक समय का, इसलिए मैं आपको समझ नहीं सकता, इसलिए आप मेरे देव हैं, दूसरा कोई कारण पद्धति है। ये अनित्यता के चरम सीमा जाती है पर्याय तक, एक समय की पर्याय समय है, दूसरे समय में दूसरे रूप में विश्व के सभी पदार्थ अपने आत्मा की भी और दूसरे सभी पदार्थ के, अक्षर की बात नहीं है। काट जंग गया और फल काट आया, न छरी आई है न छरी गई। एक समय में तीन होंगे, जंग का जाना, पेज का आना, प्रकाश का और छरी का रह जाना, इसलिए उत्पाद विद्रोह एक समय में तीन उसे दर्शन से समझ में आता है।
चक्रवर्ती राजा हम समझ बदला, चक्रवर्ती राजा
सनत कुमार चक्रवर्ती, सनत कुमार थे वो चक्रवर्ती
थे, जो नहीं तुम्हारी आदमी सुनते जी का आगे जी पसंद ऐसे अज्ञात नहीं हूँ, पर एक लिए हो तो ये पर एक कोई मान है एक मान है
एक काल में एक चौबीस में जैसे चौबीस तीर्थंकर होते हैं उसे बारह चक्रवर्ती होता है, पच्चीस में जैसे तीर्थंकर नहीं होते वैसे तेरह में कोई चक्रवर्ती, इस काल में तो कोई चक्रवर्ती है ही नहीं, भगवान के बाद सारे काम के बाद किसी ने अभी हुआ है, इसलिए चक्रवर्ती हुआ बैठे का नहीं थे तो सवाल लेता है। अंतिम चक्रवर्ती कौन हुआ? सुबह हुआ क्या? ब्रह्मदत्त हुआ, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती पहले भरत महाराज, भगवान सुखदेव के किसको भी सीखे, सबसे पहले बाद में समर्थन भावना दस चक्रवर्ती समय दृष्टि से उस मोम और भूमंड की दो विचार दृष्टि से क्या कहते हैं कि मूल मनुष्य यह समस्त जगत इंद्र जाल के समान नित्य है, ये मूल मनुष्य ऐसा संबोधन करते हैं। ये समस्त जगत इंद्र जाल के समान है, जिसको तू सच्चा मानकर उलझ रहा है इस जगत में, मेरा ये ड्यूटी है, मेरा ये फर्ज है, ऐसे व्यवहार में तो चले ही नहीं क्या स्वप्न में चल नित्य है तथा केला के स्तंभ के समान में सार नहीं आता, सुख नहीं आता, आत्महित नहीं होता है, आत्महित के लिए वो निसार है। इस बात को क्या तुम नहीं जानता, नहीं सुनता? महापुरुषों ने सुनाई है ये बात, ग्रंथों में ये बात प्रसिद्ध है, प्रत्यक्ष में दिख रहा है। कौन ग्राफ निकाल के ले गया सारी जिंदगी मजदूरी की, माना कि मैंने इकट्ठी के संपत्ति आय पूर्व कर्म से जिसकी कोई कार्यवाही से नहीं आई, चला जाता है देह को भी इधर छोड़कर दूसरे संपत्ति को ले जाने का क्या सवाल है, देह भी इधर ले जाता है, क्या प्रत्यक्ष नहीं देखता है? ऐसा करते हैं सब प्रत्यक्ष है। इसलिए इस पुत्र आदि के जाने में से उनके लिए संसार में व्यर्थ ही शोक करना है, शोक करना व्यर्थ है, शोक करने से क्या मिलेगा, क्या आत्मा आएगा, तेरे आत्मा में क्या आएगा, सिवा दुख कुछ होने वाला। ऐसा काम कर जिससे तुझे अविनाशी सुख की प्राप्ति हो जाए, बुद्धिमानी तो इसमें है कि सुख का रास्ता पकड़े दुख का रास्ता छोड़े, इसमें बुद्धिमानी है। गुरुमय का दर्शन किया जाता है भगवान सिंह कृपाल देव, जिस माया में बुद्धि अपनी थी निवासन करनी थी, बिल्डिंग का नाम आजकल है भगवान भवन, तांबा का था पत्थर का थोड़ा है, इसके सामने दो तीन पत्थर के एक बिल्डिंग पत्थर का है, इसका नाम भगवान भवन है। तो हमारे भारत के पार्टी भगवान दर्शन करते मूर्ति बनकर मूर्ति भोजन काम करते हैं, मकानों संपत्ति कारोबार में पार्क में थे विधुवाई करके शिक्षण आदमी संस्थान में कुछ भी प्रकार का काम आगे हो सकता है उनका उसको दया आदमी बन कोठा दया आदमी बन उनको सुना होगा कि आदमी उसमें बहुत कीमत है बुद्धिमान आदमी हृदय के प्रति उनको श्रद्धा हो गया, मूर्ति किया का मन मुझे बताने का तो मेरे मन में जहाँ तो ठहरना है, रहता कुछ है कि मन में तो खाली था, बात तो रहते कुछ मुंबई में से रहते वाकेश्वर उन्होंने वाकेश्वर में वाकेश्वर में खैर चार दिन बाद तो गुजर गए चले तो उनके समय दुर्गे पधारे को मुंबई से सारा परिवार आया। एक दिन शाम को सरता जी वहीं चलती थी, रात की सरता जी बोल रहे थे वहां चलते सरता के पहले मुझे ध्यान में बैठे आपको दिखाना खा ली थी पौने बार खा ली थी आधा घंटा घंटा तो उन्होंने भैया ऐसे शाम को रखते थे, फिर सरता का टाइम पाँच बजे का साढ़े चार बजे का बिल्कुल उसके पहले ध्यान में बैठे, फिर वो आ जाते चर्चा के समय पहले 10-15 मिनट पहले आ जाते अपने स्थान पे, तो वैसे वो आ गए थे। तो लोग तो खाना खाने के बाद अपने समय में आते, मैं कुछ थोड़ी देर पहले पहुंचा, वो तो घर में ही थे वजू भाई का, गुरुदेव और वजू भाई दो ही बैठे, मैं फिर साथ बैठ गया जाकर के। पड़ जाती है किसी काम में तो सबके अंतर देते हैं, ऐसा सुना ही नहीं, उसको लोग धापन भी कहते हैं, लेकिन ये संसार का धापन है, क्योंकि जन्म मरण के बड़े का कारण होता है। इस मार्ग में, इस धर्म के मार्ग में, मोक्ष मार्ग में इसकी कोई कीमत नहीं है। तो माइनस मार्क देते हैं उसको प्लस मार्क देते ही, लेकिन अगर वास्तव में तुम कुशल हो, झापड़ वाला हो, बुद्धिमानी हो, तो आत्मकल्याण कैसे करना वो समझ लो, ये समझने की चीज है। अगर बुद्धिमानी हो तो इस विषय को समझो, तुम्हारा कल्याण करो, पारमार्थिक झापड़ वही झापड़ है, बाकी कोई झापड़ मात्र नहीं है। हम तीनों लिखे हैं, ये बात मैंने कोई नसीब वाला नहीं, फिर उनको बोलता है कि तुम्हारा डॉक्टर तुम डाइवर्ट कर दो इस लाइन में, छोड़ो ये झंझाल। ये बात किया आचार्य महाराज ने, नित्य परमानंद आस्तम गच्छसि, तुम जाओ गच्छसि, गच्छसि मैंने तुम जाओ, कहाँ जाओ, नित्य परमानंद मिले उस स्थान में। ऐसे भावार्थ है कि संसार में यदि एक भी चीज नित्य अथवा सार्वभूत होती तब तो इसके लिए शोक करना व्यर्थ न होता, पर अगर किसी एक भी चीज नित्य या सार्वभूत होती या सुखदायक होती या आत्महित के लिए काम की होती तो उसके लिए श्लोक करना व्यर्थ न होता। किंतु संसार में तो समस्त वस्तु इंद्रजाल और केला के स्तंभ के समान विनाशिक और निषाद है, सभी पदार्थ किसी में सुख नहीं और किसी का कोई मूल्य करने की चीज नहीं, इसका कीमत करके हम अटकते हैं। अटकना क्यों होता है, इसकी कीमत है इसलिए अटकते हैं। पहले तो तुम अपने समझ में इसकी कीमत उड़ा दो, आचार्य देव क्या कहते हैं, पहले तो तुम कुछ कीमत नहीं है, उसकी तुच्छता को समझो। और जैसे केले के स्तंभ फेंक देने के लायक है, वैसे वो निषाद फिर शोक करना सर्वथा व्यर्थ है। इसलिए हे भूलो उस प्रसिद्ध रत्नत्रय का आराधन करो, इसलिए भव्यो तुम उस प्रसिद्ध रत्नत्रय का आराधन करो, जिससे तुमको मोक्ष आदि सुख की प्राप्ति बिना कष्ट किए हुए ही हो, इसमें कोई कष्ट नहीं। रत्नत्रय की आराधना से सब रत्नत्रय में समय दर्शन समय ज्ञान चारित्र उसके आराधन से बिना कष्ट मैंने आनंद भोगते भोगते सुखी होते होते मोक्ष मार्ग में सुख और शुरू से ही प्रारंभ हो जाता है। ऐसा सुख के जगत में कहीं उसकी गंध भी आती नहीं, ऐसा सुख होता है उसको तुम प्राप्त करते करते शास्त्र सुख के स्थान को प्राप्त करो। Thank you. फिर हम धातु धनु मृत ये बदिने मृत्यो प्राप्त पुनस्तिमोने पिनरक्षकोस्ति तद्यो मृते सति विजय की शुचम करोति उत्कृत्य रोगिति उन्हें विजन सुनी था। अर्थ कहते हैं कि जो मनुष्य पैदा हुआ है वो मरण के दिन अवश्य ही मरता है, तथा मरते समय तीनों लोक में उसकी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि जो मनुष्य अपने प्रिय स्त्री पुत्रादि के मरने पर शोक करता है वह मनुष्य जहाँ पर कोई जन नहीं है ऐसे वन में जाकर खुक्का मार मार कर रोता है। खुक्का मार ऐसा जान करता है सुनने वाला उसका रुदन अरण्य रुदन जिसको कहते हैं अरण्य रुदन तो सुनने वाले नहीं
जंगल में जाके कौन किया है बुरा है कि शरीर की सूखी मिजाज जो नहीं होगा तो जंगल में जाके कौन मुंगा है ऐसा है।
ये वास्तविकता है कि जिसका जो मनुष्य का उत्पन्न होने का है उसका मरण भी निश्चित ही है। लोग तो इसके विचार से भी भयन ध्यान में होते हैं, भयग्रस्त हो जाते हैं, मरण के विचार से ही भयग्रस्त हो जाते हैं। वो बात तो ऐसी है कि जैसे बिल्ली आने से चूहा आंख मिट जाए और बिल्ली खा जाती है तो आंख मिट देने से क्या बिल्ली नहीं खा जाएगी क्या? अरे बिल्ली आ गई, बिल्ली को देखना ही नहीं है आदमी। ऐसी बात है तो मरण की बात हमको नहीं सुननी ऐसा कहते हैं भाई बहुत है ऐसा परिणाम आता है। लेकिन ये तो बिल्ली आई और चूहा को आंख नीचे देने की बात है जो होने वाली है तुम इसके विषय में दुखी नहीं हो। एक दुख का प्रसंग है सारे संसार में, ये दुख का प्रसंग है। एक ज्ञानियों के जीवन में ये दुख का प्रसंग नहीं है। समन भद्राचार्य का रत्न करंद श्राव का आचार नाम है ग्रंथ है, आचरण का करना भी दुख का प्रसंग है। श्राव का आचार श्राव में ये संपन्न है कि नहीं जो ज्ञानी है उसको ज्ञानी तो उनके लिए ये दुख का प्रसंग नहीं है, उनके लिए उत्सव का प्रसंग है जिसका अधिकार का नाम ही उन्होंने दिया है मृत्यु महोत्सव। आचार्य देव उत्सव को मृत्यु का महोत्सव कह रहे हैं। सारे संसार से उनकी बात है कि है महोत्सव में तो लोग खुशी होते हैं और सारी दुनिया तो रोती है इस प्रसंग। ज्ञानियों के लिए खुशी का प्रसंग है, महोत्सव का प्रसंग है। इसीलिए महोत्सव का प्रसंग है कि जिस देह के छूटने के काल में जो देह की परिस्थिति बिगड़ती है उसी काल में उनकी आत्मा के पुरुषार्थ की परिस्थिति सुधरती है, इसलिए उसको महोत्सव कहा। उस वक्त सबसे अधिक पुरुषार्थ वो करते हैं, स्वतंग पर सहन स्वतंग आपको आप ऐसा होता है ऑटोमेटिक ऐसा होता है। जब पता चला गया उनको तब ये देश छुपने का प्रसंग आ गया तो संसार के प्राणी भयान होकर दुखी हो जाते हैं, बहुत से तो कुछ बुद्ध गवा देते हैं, ग्रसित हो जाते हैं, मूर्छा को प्राप्त हो जाता है, इतना दुख हो जाता है, मूर्छित हो जाते हैं। लेकिन ये एक कल्पना, मैं मर जाऊंगा इसी कल्पना में वो मूर्छा आती है, दुख मर करते हैं। ज्ञानी को तो बेटी संयोग के काल में ही मूर्छा नहीं है इस पर। मैं तो ये तो अभ्यास किया है कि ये देह मेरी नहीं है, जिस देह से मुझे कुछ संबंध नहीं है, मैं देह से भिन्न गया एक आत्मा, ये तो प्रयोग किया है। इसलिए जब देह का वियोग होने का काल आता है तो उसको पुरुषा को मौत देगा, खत्म खत्म ऐसी हो जाती है। ऐसे प्रसंग में उसका सुख भी बढ़ता है, प्रशांत बढ़ता है तो जो परिणति में जो सुख है वो सुख बढ़ जाता है। और तीव्र पुरुषार्थ कुछ ज्ञानियों में इतना तीव्र पुरुषार्थ होता है, उतना तीव्र पुरुषार्थ हो जाता है तो वो शुद्ध उपयोग में नहीं कुछ होता, निर्विकल्प तत्व में उनके काम में उसका देश हो जाता है। बात यह है समझ में आती है, चर्चा में मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहना, ऐसे बहुत से बोल रहे हैं, मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहना। और उस वक्त जो पुरुषार्थ बढ़ता है तो इतना पुरुषार्थ बढ़ना चाहिए कि निर्विकल्प शुद्धोपयोग में ही आनंद के उफान आती है, जिस शुद्धोपयोग में आनंद की उफान आती है वह आता है। एक देह छूट जाने का काल हो, इधर अन्न का उत्पाद, ऐसे काल में ज्ञानी देह छोड़ते हैं, उस परिस्थिति में छोड़ते हैं। इसलिए आचार्य महाराज ने यह कहा कि ये तो महोत्सव है, अधिक आनंद का समय, अधिक आनंद का प्रसंग, इसलिए उसको महोत्सव कहते हैं। सारी दुनिया से उनकी बात जो बात सुनने नहीं चाहते, करना नहीं चाहते, उसका विचार में लाना नहीं चाहते, उसको विचार में लाना नहीं चाहते, अपना क्या अपने परिवार के सदस्य का भी विचार करना नहीं चाहेगा कि ऐसा प्रसंग कोई हो घर में, मुझे मिला नहीं रहेगा। तो ये कहता है ये होगा ही होगा, ये बात निश्चित है। तुम आनंद का प्रसंग बना लो, दुख का प्रसंग तो अज्ञानी से होता है सारे संसार, तुम आनंद का प्रसंग उसको बनाओ, बस यही प्रेरणा है आचार्य महाराज की। बात क्या है तो अवश्य ये परिस्थिति तो अवश्य आती ही है, ऐसा कहते हैं, और उसको रोकने के लिए इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र किसी के बस की ये चीज नहीं है। इसलिए अपने प्रिय पात्र के मरण पर शोक करना उचित नहीं है, मैंने प्रियता की है वही भूल तो की है, तो शोक होने की भूल दूसरी हो ही जाएगी। अभी से ही तुम प्रेम चालू कर दो, मिठास अभी से ही हुए नहीं, फिर कोई आपत्ति नहीं। ऐसे देह पर भी जो मिठास है, तुम्हें देह छूटने पर मूर्छा मूर्छा ले आएगी, मूर्छित नहीं होना है, फिर भी एक सेकंड में मूर्छित हो जाता है, लेकिन सेकंड नहीं लगती, एक सेकंड में मूर्छित होता है, हार्ट अटैक आता है, बगल वाले को बोल नहीं सकता कि मुझे कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है उतना भी नहीं, जैसा दर्द होता है उनको पता चलता है कि अरे गर्भ हो गया, इधर गड़बड़ी गड़बड़ी चल चल हो गई है, एक सेकंड में मूर्छित हो जाता है, बोल नहीं सकता, इसका ही कारण मूर्छित हो जाता है, दुखान होता है, इतना दुख मटने में कोई देर नहीं लगती, जैसे एक सेकंड में कम भाग में निर्विकल्प आनंद हो सकता है, ऐसे एक सेकंड में एकदम दुख हो जाता है, एक क्षण में ही हो जाता है। मैंने रस के तारतम्यता बढ़ने में देर नहीं लगती कभी, इतना जोर से ये परिणाम आता है, दुख का भी और सुख का भी, जैसा जिसका प्रसाद।
समय के साथ रस का फैक्टर काम नहीं करता,
नहीं, बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा रस बढ़ सकता है, क्योंकि इतनी शक्ति है आत्मा, उल्टा सुल्टा रस बढ़ाने की शक्ति आत्मा में है, वो तो ताकत है, रस में तो ताकत है, एक क्षण में कितना भी बढ़ सकता है, चाहे उल्टा चाहे सुल्टा।